यहाँ ये बता रहे हैं कि अभी तो हमको कहना योग को थोड़ा सा ग्राउंड कर दिया, ऐसा समझना चाहिए जब तक यह जीव छठे सातवें गुण स्थान में झूलता हुआ रहता है और छठे गुण स्थान में उसे 28 नियम पालन करने की क्षमता मानते हैं। और उसको भी यहाँ कहा गया है कि वे कषायतन है, कषायतन तो समझते हैं वास्तव में जो जीव को कसे कसे यानी दुख दे उसको कसा दे। आप आयकर भरते हो क्या? आयकर यानी इनकम, गाय का इनकम, दुख का इनकम, जिसके कारण इस जीव को दुख की प्राप्ति हो उसे कसा दे। कषायतन यानी जो मुनिराज है उन्हें जो शुभराग आ रहा है, कौन सा शुभराग? 28 निर्गुण पालन करने का जो शुभराग है वह भी दुखदायक है, दुख को देने वाला है और दुख स्वरूप है। मुझे तो क्या कह रहे हैं, पूर्ण वितराग दशा न हो तब तक मुनि को महाव्रत के परिणाम आते हैं, आते हैं इधर जरूर आते हैं, लेकिन किंतु ये कषायतन है। देखो ऐसा बोलना और ऐसा समझना ये बहुत बहुत मुश्किल बात है। मैंने 28 निर्गुण पालन करने को आप कषा करते हो? हाँ है, लेकिन वो बोलकर इसका समझ भी जाए तब तो बहुत बढ़िया बात। क्या कहते हैं अब यहाँ चारित्र की बात करते हैं, स्वाभाविक दर्शन ज्ञान की प्रतीति हुई है, किंतु बीच में राग आ जाता है। क्या कह रहे हैं हम? अब यहाँ किसकी बात हो रही है? जीव द्रव्य में जो चारित्र है उसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसा वो ये कहते हैं कि स्वाभाविक लिखा है, वो स्वाभाविक है दर्शन ज्ञान की प्रतीति है। मैं ज्ञान दर्शन में हूँ ऐसी किसी जीव को श्रद्धा उत्पन्न हुई है, परंतु अभी भी क्या है बीच में राग आता है। अब कन्हारियों की अपेक्षा जब हम देखते हैं तो ये राग कौन से गुण स्थान तक होता है? आवाज नहीं निकल रही, क्या बात है? बोलो बोलो। 10वें के अंत तक कषाय है, कौन सा? सूक्ष्म लोग। तो कहते हैं कि तब तक जीव को बीच में राग आ जाता है। मैं देख कर चलू, यहाँ तो छठे गुण स्थान की बात कर रहे हैं, ये दसवें गुण स्थान की बात नहीं है। मैं देख कर चलू, विचार करके बोलू, 28 निर्गुण पालन करूं, ऐसा कषाय पर जो मुनि दशा में छठवें गुण स्थान में आता है वह भी कषाय है, रोग है किंतु धर्म नहीं है। तो सच बोलना भी ताकत चाहिए किसी बोली में। क्या कहते हैं? यहाँ छठवें गुण स्थान की बात चलती है, कषायतन धर्म नहीं है, व्यवहार धर्म अर्थात वास्तव में जो धर्म नहीं है। छठवें गुण स्थान में ऐसा ही राग निमित्त है जिससे उसमें व्यवहार धर्म का आरोप आता है। व्यवहार में कैसा है वैसा वस्तु स्वरूप नहीं है, किंतु निमित्त आदि का ध्यान कराने की अपेक्षा से यह उपचार किया है। क्या कहते हैं? मैं ये समझा रहे हैं कि जो व्यवहार में का कथन होता है, तो व्यवहार में का कथन यानी क्या कि दो द्रव्यों का मिलकर एक कार्य होता है, ऐसा क्यों न?
या जो निमित्त की बात है, निमित्त से कार्य होता है ऐसा कहना या किसी के ऊपर संयोग की अपेक्षा से आरोप करके कि वह उसका है, जैसा हम आपने पूछा ये शर्त किसका है, तो हमने कहा मेरा है क्योंकि मेरे संयोग में, वैसे इस जीव का स्वभाव तो वितराग स्वभाव है लेकिन अभी उसे राग है, तो राग किसके साथ है, तो जो शुद्धोपयोग है उसके साथ साथ शुभोपयोग भी है, इसलिए शुद्ध उपयोग को तो चारित्र कहा, उसके साथ साथ जो शुभ राग है उसको भी उपचार से चारित्र कहा, उसको व्यवहार चारित्र कहा। वास्तव में जो यथार्थतया जब हम देखते हैं तो व्यवहार चारित्र यानी जो राग परिणाम है वह चारित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह चारित्र गुण की विभाव परिणाम है राग के परिणाम। यहाँ कहते हैं जैसे हम देखते हैं ना कि ये जो बादाम होता है वो ऊपर का जो छिलका होता है उसे भी बादाम कहते हैं, तो वह तो उपचार से उसको बादाम कहते हैं, असल में तो अंदर में जो मीगी होती है बीज वह साचा बना, लेकिन उसके साथ में रहता है उसका छिलका जो है उसको भी बादाम कहते हैं। आम के छिलकों को बादाम कहेंगे कि नहीं, क्यों वो उसके संयोग में नहीं है, उसके साथ में नहीं है। इस तरह यहाँ कहते हैं कि व्यवहार में कहता है ऐसा जो कहता है, व्यवहार ने जो कहता है वैसा वस्तु स्वरूप नहीं है, किंतु निमित्त आदि का ज्ञान कराने की अपेक्षा से यह उपचार किया है। मुख्य रूप से तो आत्मा में स्वभाव सन्मुख दशा वर्तती है, किंतु जो अल्पराग आता है उसे आश्रय करने योग्य नहीं मानते, निर्दोष आहार हूँ, ऐसा जो राग आता है वह भी शुभ राग है, कषाय है। देखो अब यहाँ एक और एक नई बात बता दी है, क्या कहा भावनगर कि मुनिराज को जो आहार का भाव आता है कि मैं निर्दोष आहार लूं, उसको भी शुभ राग कहा। देखो और हम तुम आहार के भाव करते हैं तो वो अशुभ पाप भाव है, ये समझ लो। अकेला नग्न हो जाए उनकी यहाँ बात नहीं है, आत्मा और शरीर दो कहे और एक दूसरे की एक दूसरे में नास्ती नहीं माने तो उसने दो तत्व पृथक स्वतंत्र नहीं माने, स्वभाव में विभाव नहीं है और विभाव त्रिकाली स्वभाव में नहीं है, इस प्रकार अनेकांत माने बिना विभाव और स्वभाव की पृथकता सिद्ध नहीं होती। क्या कहा देखो, अभी जो हमने बात बताई थी उसी को उन्होंने और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि हमारी समझ में तुरंत आ गया। क्या कह रहे हैं, पहले तो आत्मा और शरीर को दो कहे, यानी मैं जुदा हूँ और यह शरीर जुदा है, ऐसा तो कहे, और क्या कहते हैं एक दूसरे में नास्ती नहीं है ऐसा माने, यानी दोनों एक दूसरे में है ऐसा माने, वो तो ठीक, उसने तो दो स्वतंत्र पृथक तत्वों को माना नहीं। इसके आगे की जो बात है ये स्वभाव में विभाव नहीं है, यानी जो चारित्र दशा है जीव के जो सम्यक चारित्र की जो अवस्था है उसमें विभाव भाव यानी राग द्वेष के परिणाम नहीं रह सकते। क्या कहा, स्वभाव में विभाव नहीं है और विभाव, सुनना, विभाव जो है वो त्रिकाली स्वभाव में नहीं है, पर्याय में है, त्रिकाली स्वभाव में नहीं। देखो क्या लिखा, कि स्वभाव में विभाव नहीं है और विभाव, पहले तो ये नक्की किया कि तेरा स्वभाव विभाव से रहित है, राग द्वेष से रहित है, ऐसा समझाया, और फिर बाद में कहते हैं ये जो विभाव भाव है यानी राग द्वेष के परिणाम है वो तेरे त्रिकाली स्वभाव में है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो यह जीव जो वितराग दशा प्राप्त करता है वो कहाँ से प्राप्त करेगा? जो अपने में स्वभाव रूप से जो वितरागता है, अरागता है, तो ऐसी अराग दशा, अराग जो स्वभाव है उसी में से तो वितराग दशा आएगी। अराग और वितराग में फर्क समझ में आया? देखो देखो बताओ, अराग यानी जिसमें राग है ही नहीं, और वितराग यानी जिसका राग निकल गया है, यानी पहले था अभी वो कैसा हुआ है? वितराग। तो ऐसे जो वितराग जो स्वभाव था उसी में से वितराग अवस्था प्राप्त होगी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि विभाव जो है वो त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। तो त्रिकाली स्वभाव कैसा है? राग रहित है, विभाव रहित है। इस प्रकार अनेकांत माने बिना, ये अनेकांत कैसा है? ये स्वभाव में विभाव नहीं है और विभाव त्रिकाली स्वभाव में नहीं है, ऐसा जो अनेकांत है उसको माने बिना विभाव और स्वभाव की पृथकता सिद्ध नहीं होती। यानी दोनों जुदे जुदे है, अलग अलग है, यह सिद्ध नहीं होगा। दर्शन और ज्ञान स्वरूप आत्मा है, पांच महाव्रत का राग रूपी कण उठता है, वह भी आत्मा नहीं है। तो ये जो राग रूपी जो महाव्रत पालन करने के राग रूपी जो कण कषाय कण है, तो वो तत्वों में उसको कौन से तत्वों में बिठाएंगे? भावना में आश्रव तत्वों में और पुण्य पाप इसमें बिठाना हो तो। हाँ जी, मेरा शब्द आ रहा, प्रश्न नहीं समझा। सात तत्वों में आश्रव में आपने बिठाया, नौ पदार्थ जो कहे हुए यहाँ पे उसमें पुण्य पाप को हम जोड़ते हैं, तो इसमें ये नौ पदार्थ या नौ तत्व जो कहेंगे उसमें इसको कहाँ जोड़ेंगे हम? हाँ, कौन बोल रहे? हाँ जी, पुण्य पाप माँ नहीं बहन, पुण्य माँ जो जोड़ा है, क्योंकि 28 मूल गुण पालन करने के जो राग है वो तो प्रशस्त राग है, और वो पुण्यास्त्रव कहो या पुण्य कहो, क्योंकि देखो हम देखो जब सात तत्व कहते हैं और उसमें और दो पुण्य और पाप ऐसे अन्य दो तत्व जोड़ देते हैं तो उसको नव पदार्थ कहने में आता है। तो उसमें आश्रवों को अलग किया और पुण्य पाप को अलग किया, तो आप कहेंगे अभी पुण्य पाप के बाद और आश्रव रहा कौन सा? तो उसको तो आपने उधर उठा लिया, पुण्य में और पाप में। तो आश्रव के भेद आप जानते हैं क्या? जानते हैं? बोलो बोलो। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, ये कषाय में पुण्य पाप आ गया, और कषाय और योग, ये बाकी चार जो है वो अन्य में ले लेना आश्रव में। डॉक्टर साहब समझ में आई बात? आप जरा लेट आइए इसलिए। हाँ देखो, ये थोड़ी सी गहराई की बात है, समझ में आवे तो ठीक है और नहीं समझ में आवे तो कोई चिंता नहीं है। देखो स्थूल रूप से हम ऐसा ही याद करते हैं कि मोह, राग और द्वेष इसको आश्रव कहेंगे, लेकिन वास्तव में आश्रव के पांच भेद बताए शास्त्र में। प्रतिभा से याद है आपको? अभी हमने बताए, कोई बात नहीं। देखो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। देखो आपको तत्वार सूत्र याद होगा तो उसमें आठवें अधिकार में पहला सूत्र है, ये पांच नाम लेके ये बंद के हेतु है, ऐसा उसमें कहा। बंद का हेतु कौन होगा? आश्रय ही होगा। और यहाँ पुण्य और पाप में वो कषाय को अलग कर दिया, बाकी को आश्रय में रखा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? हम कहाँ गए थे? इस प्रकार अनेकांत माने बिना विभाव और स्वभाव की पृथकता सिद्ध नहीं होती है। दर्शन और ज्ञान स्वरूप आत्मा है। अब यहाँ तक तो आए थे, पांच महाव्रत का राग रूपी कण, ये राग रूपी यानी शुभ राग है, यह उठता है, वह भी आत्मा नहीं है। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव चाहिए, वो श्र लिखा है ना, वो स्र करना, स्र को ऐसा क्र जैसा लगाते ना वैसा, ये श्र ऐसा नहीं करता, आश्रव क्रम लिखते ना वैसा स्र। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये नौ तत्व है। महाव्रत का विकल्प पुण्य अथवा आश्रव तत्व है, पुण्य और पुण्य पाप आत्मा नहीं है, ऐसी प्रतीति है। अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य और अचौर्य और निष्परिग्रह रूप महाव्रत है, वह भी राग है, वृत्तियों का तूफान है। क्या कहा, ये पालन करने की जो वृत्तियां है वो तूफान है कहते हैं, क्योंकि वो ऐसे डगमगा रहा है, क्या करूं क्या करूं, मतलब ये पालू वो पालू, अपने स्वरूप में लीनता नहीं है उस अपेक्षा उसको तूफान का, वृत्तियों का तूफान है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में विभाव का अभाव है, जब तक वितराग नहीं।
एक प्रश्न है,
हाँ जी बोलो।
किसी को अभी ये महाव्रत के परिणाम से अभी मैं स्वरूप में स्थिरता करूं, ऐसी वृत्ति उठी तो वो क्या है? हाँ देखो देखो, दो बातें, एक ना, एक तो स्वरूप की स्थिरता जो निश्चय चारित्र है, और मैं अभी स्वरूप में स्थिर हो जाऊं, ऐसी भावना हुई, ऐसी इच्छा हुई, ऐसी वृत्ति उठी, वो वृत्ति क्या है? शुद्ध भाव है कि शुभ भाव? शुभ भाव। हाँ, यानी दो बातें हैं ना अलग अलग, वृत्ति का उठना और स्थिरता होना, एक्चुअली ये दो अलग बातें हैं।
तो एक अपेक्षा से यह भी वृत्तियों का तूफान ही है, चमने वाला। हाँ साहब, करेंगे ना?
भाव होते हैं परंतु उसको वो शुद्धता नहीं मानते, वो राग मानते हैं ना उसको, जो है उसको जानते हो, उसको राग तरीके से जान रहे हैं, और जो स्वरूप स्थिरता करेगा उसके पहले उसका ऐसी वृत्ति उठेगी, परंतु वृत्ति उठी इसलिए स्वरूप स्थिरता हुई ऐसी भी बात नहीं तो राग के कारण स्वरूप स्थिरता हुई ऐसा मानना पड़ेगा।
क्या बोलते हैं, समझ में नहीं है? हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, अभी अपन ऐसी तलवार लाएंगे जिसके ऊपर धार नहीं होगी एकदम ऐसे। बेन, ऐसी बात है ना कि अभी मैं कुछ करूं इसकी भावना है ना, यानी अंतरंग में स्थिर हूं, ऐसे परिणाम तो उनको आएंगे, तो आए बिना क्या उनको थोड़ी पिक्चर देखने के परिणाम आएंगे, वो तो ऐसा ही मानते कि ये जो राग आ रहा है उसका भी मैं ज्ञाता हूं, ये क्यों आ रहे, आने नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता उनको, लेकिन अंतरंग में तो ऐसी वृत्ति उठती है कि मैं अपने स्वरूप में लीन हो जाऊं, जब ही तो उनका पुरुषार्थ उपड़ेगा ना, लेकिन जब तक पुरुषार्थ पूर्वक अपने स्वरूप में स्थिर नहीं होते हैं, उसको भी यहाँ वृत्तियों का तूफान का है। क्यों? कि ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में विभाव का अभाव है, ये मूल बात है। जब तक वितराग नहीं हुआ तब तक ऐसा मंद कषाय रूप राग आता है जिसे कषाय कण कहते हैं, मुनि दशा में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान नाम की तीन कषाय चोपड़ी का अभाव हुआ है, अल्प संज्वलन कषाय कण बाकी है जो पुण्य का कारण है। हम कहते हैं ना जब जब के मुनियों को अशुभोपयोग नहीं होता है, वह संज्वलन कषाय जो है उसके कारण से वह पुण्य का ही कारण है। ऐसा लिखा देखो 28 मूल गुण और शुक्ल लेशा पुण्य का कारण है, उसका भी अभाव करके मुनि मोक्ष दशा प्राप्त करते हैं। इसलिए उसका अभाव करने वाले को शुभ राग परंपरा से मोक्ष का उपचार कारण कहा है। हाजी हाँ, उपचार मात्र कारण है। बहुत अच्छा, देखो क्या कहते हैं। बहुत बार ऐसा लिखने में आता है, शास्त्र में कहने में आता है कि यह जो मुनि है या जो सम्यक दृष्टि है, यहाँ तो मुनि की बात है कि उनके शुभ राग भी परंपरा मोक्ष का कारण है। देखो देखो ये पार्शियलिटी हो गई कि उनके शुभ राग तो मोक्ष का कारण और हम शुभ राग करें तो हमको बंद, तो फिर हमने उसमें दो टुकड़े कर दिए। कुछ शुभ राग ऐसे होते उससे मोक्ष और कुछ शुभ राग होता है उससे बंद। क्या ऐसा है? नहीं है। शुभ राग तो शुभ राग है लेकिन कहने में आता है, कहने में आता है यानी वो उपचार का कथन है। और पहले हमको बताया था व्यवहार ने कहता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, ये पहले बताया था। किंतु निमित्त आदि का कारण, यानी वो निमित्त है कौन सा? शुभ राग, तो थोड़ा तो मदद करता होगा कि नहीं, ऐसा ये जीव मानता है और उसे गड़बड़ी करता है। तो यहाँ तो कह रहे हैं वो शुभ राग को भी छोड़कर जब शुद्ध में जाता है तब वो मोक्ष प्राप्त करेगा। देखो ऊपर ही लिखा है, ये नीचे से चौथी पांचवी लाइन है। 28 मूलगुण और शुक्ल लेशा पुण्य का कारण है, उसका भी अभाव करके, यानी शुभ राग का भी अभाव करके मुनि मोक्ष दशा प्राप्त करते हैं। इसलिए उसका अभाव करने वाले को, वैसे अभाव करते हैं उनके लिए कहते हैं शुभ राग परंपरा से मोक्ष का उपचार मात्र कारण है। उपचार यानी निमित्त मात्र कारण है, कहने के लिए कारण है। किंतु मिथ्या दृष्टि का शुभ राग तो परंपरा से सर्व अनर्थ का कारण है। बहु आक्रू लागे एम छे हो मनीषा बेन? हाँ हाँ कहते है। तो ऐसी बात कितना क्लियर कट लिखा है। इसलिए उसका अभाव करने वाले के शुभ राग परंपरा से मोक्ष का उपचार कारण है कहा है। और मिथ्या दृष्टि को जो शुभ राग है कौन सा, वो बाकी आप तो सब जानते हैं शुभ राग क्या क्या होता है। उपवास करना, पोसा करना और क्या क्या है, क्या था पोसा है नहीं समझे? हाँ वो तो मिथ्या दृष्टि की जो है ये सारे कहते हैं अनर्थ का कारण है। अनर्थ यानी क्या होगा? भिखारी नहीं बनेगा लेकिन संसार में रखेगा, वो मूल बात है। हमें तो संसार में रखना चलेगा लेकिन थोड़ा सा नाना बन जो जेब में होगा तो हम खुश, ऐसा जीव मानता है। ख्याल में क्या कहते हैं देखो, मिथ्या दृष्टि का शुभ राग तो परंपरा से सर्व अनर्थ का कारण है। इस प्रकार 85 शास्त्र में श्री जयसेन आचार्य ने टीका में कहा है, जहाँ तक मुनि को पूर्ण भेद का अवलंबन नहीं है वहाँ तक प्रत्याख्यान। देखो आ गया कि पोसा नहीं आया लेकिन पचकान आया। प्रत्याख्यान सामायिक वंदन आदि का राग आता है किंतु वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्योंकि ये है और क्योंकि में गैप चाहिए। वह कषाय कण है, पुण्य बंध का कारण है, स्वभाव की प्राप्ति का किंचित भी कारण नहीं है। तब भी ऐसा शुभ राग बीच में आ जाता है, अतः उसका ज्ञान कराया है। क्योंकि ज्ञान तत्व ये चल रहा है ना अपना पहला, तो उसमें कैसे कैसे कौन से बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए वो सब बता रहे हैं। मुनि को चारित्र गुण में क्रम में शुभ राग आ जाता है, किंतु वे शुभरा को नहीं लाते। ऐसा चराग चारित्र क्रम में आ गया है, लाया नहीं गया, आ गया है। मैं अरागी निर्मोही ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूप हूँ, ऐसी दृष्टि है। वर्तमान में तीन जाति की कषाय का अभाव हुआ है, किंतु अल्प कषाय शेष है। जैसे लेंडी पीपर में 50 फुटी तिखास व्यक्त होने पर थोड़ी कचास और थोड़ी तिखास का भाग शेष रह जाता है, क्योंकि वो 64 फुटी तिखास आवे तो परिपूर्ण होती है, या अभी 50 आई है, यानी अभी संज्वलन कषाय बाकी है, ऐसा बताना चाहते हैं मुनियों को। कैसे आपस में क्यों कैसा है, डॉक्टर पूछे कि भाई अभी कैसा आपका तबियत, अभी थोड़ा सा आराम है, एक आना आराम है, चार आना आराम है तबियत, और आजकल पूछेंगे तो 50% है, अभी परसेंट में आ गए। तो उसे पैसे का 1 रुपया होता था, आपको भी मालूम होना चाहिए। ये नया पैसा आने के पहले पुराना पैसा जो था,
हाँ,
एक आने के 4 पैसे, 16 आने का
1 रुपया होता था। हाँ ऐसा, अभी 16 आना कैसे कहते हैं, स्वर्ण का 16 आना है ना, सोल वाली, वो सोल क्यों कहा,
पूरा पूरा
16 आने का रुपया होता है, इसलिए सोल वाली कहा।
वो तो एक मेजरमेंट है, यानी एक क्या एक फुटी दो फुटी ऐसा नहीं लेना उसको, कितने परसेंट में वो तिखास और उसका ये आता है, तिखास क्या कहते हैं, तिखास ही में तिखास की बात लिया और कुछ नहीं, वहाँ पहले ग्रीन भी कलर लिया था, यहाँ तो केवल तिखास की बात ली है। यानी यहाँ ये कह रहे हैं कि वर्तमान में तीन जाति के कषाय का अभाव हुआ है, किंतु अल्प कषाय शेष है। अभी वो अल्प कषाय शेष किस तरह से है कि जैसे लेंडी पीपर में 50 फुटी तिखास व्यक्त होने पर थोड़ी कचास और थोड़ी तिखास का भाग शेष रहता है, वैसे ही आत्मा स्वयं स्वाभाविक या स्वाभाविक है, ज्ञान दर्शन आनंद वाला है, उसमें आंशिक निर्मलता प्रकट की है और पूर्ण व्यक्त करने का अभिलाषी हूँ, किंतु जब तक पूर्णता न हो तब तक भूमिका अनुसार ऐसा राग उठता यानी आता है। विचार कर बोलूं आदि पांच समिति पालू, विचार कर बोलूं आदि पांच समिति पालू, यह जीव न मरे, इत्यादि प्रकार के शुभ राग आते हैं जो पुण्यबंध का कारण है, उनके होने पर भी वे स्वभाव की प्राप्ति के किंचित भी कारण नहीं है। वे यानी कौन, ये शुभ परिणाम मुझे क्रम में सराग चारित्र आ गया है, छठवें गुणस्थान के क्रम में इस प्रकार का राग आ गया है, वह उनके कालक्रम में आ गया है, इसमें महासिद्धांत है। यानी ये कहना चाहते हैं कि ऐसे बीच बीच में राग के कषाय कण उठते हैं, उसमें कोई मतलब गैर नहीं है, लेकिन वो जो राग उठता है वह कोई मोक्ष का कारण नहीं है। भले उसे परंपरा मोक्ष के कारण कहें, लेकिन उसके कारण यहाँ शुद्धता बढ़ती है ऐसा भी नहीं है। जिस समय जो पर्याय आने वाली है वह आती है, ऐसा जिसने स्वद्रव्य सन्मुख होकर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव सन्मुख रहकर ये निर्णय चाहिए, वो निर्वियज हो गया है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव सन्मुख होकर निर्णय किया है, उसे ऐसा राग क्रम में ऐसा आता है जिसे निमित्त कहा जाता है। किंतु जो पांच महाव्रत के राग को लाना चाहता है वह मिथ्या दृष्टि होने से उसका शुभ राग चारित्र भूमिका का निमित्त नहीं कहलाता। यानी जो साक्ष्य मुनि है उनके जो राग आ जाता है बीच में उसको तो निमित्त कहेंगे, सहचर कहेंगे, उपचार मात्र कहेंगे, लेकिन जिसके ऐसी मान्यता है कि मुझे ये ऐसे ऐसे परिणाम लाने ही पड़ते हैं, लाने ही चाहिए, तो कह रहे हैं कि उसके ये जो राग है वह चारित्र का कारण भी नहीं है, निमित्त भी नहीं है। आत्मा मनीषा बहन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। हाँ देखो, बात ऐसी है कि जिसको चारित्र ही नहीं है, साचा चारित्र मिथ्या दृष्टि को, तो उपचार से दूसरे को कैसा आरोप देंगे कि ये भी इसके शुभ परिणाम भी चारित्र है करके। अब जो सम्यक दृष्टि जीव है, मुनिराज है, उनके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, ऐसे जीव को जो सकल चारित्र प्राप्त हुआ है, बहुत प्रचुर आनंद का वेदन भी है उन्हें, ऐसे जीव के जो राग उठते हैं कौन से 28 मूलगुण पालन करने के, उस राग को निमित्त से उपचार से आरोपित कि वह भी चारित्र है, व्यवहार चारित्र है, ऐसा उनको कहेंगे। जैसा यहाँ हम फेल हो गए हैं परीक्षा में, तो फेल हो गए उसको 100% मार्क्स मिलेंगे कि नहीं? ख्याल में जो पास होगा पहले नंबर से उसी को होंगे भाई, उसके इतने मार्क्स हैं। अभी उसको उपचार से भी नहीं कहेंगे कि ये ऐसा है। हाँ कोई ऐसा होगा कि वो बोलेगा हाँ मैं पहला नंबर आ गया, कहाँ से? पीछे से, सबसे लास्ट इंग नंबर से। वो बात ध्यान नहीं। तो कहते हैं वह मिथ्या दृष्टि होने से उसका शुभराग चारित्र भूमिका का निमित्त नहीं कहलाता। शुभराग चारित्र जो है वो भूमिका का मतलब अभी वो जो मुनि दशा पालन कर रहे हैं उसका निमित्त भी नहीं होगा। आत्मा तो सदा ही जगत के पदार्थों को जानने देखने वाला है, जो भी राग होता है उसे रागपने जानने वाला है। ये मुनियों की बात नहीं है, सुशीला बहन सबकी बात है। क्या आपने कल पूछा था ना, उसका उत्तर इसमें आया। क्या कहा देखो, आत्मा तो सदा ही जगत के पदार्थों को, तो आत्मा न लेते हुए सुशीला बेन तो सदा ही जगत के पदार्थ को जानने देखने वाला जीव है। जो भी राग आता है होता है उसे रागपने जानने वाला है। भूमिका के योग्य राग आता है, अभी यहाँ मुनि लेना, अभी आप हट जाना भी। मुनि दशा में 28 मूलगुण पालन के राग के आने का काल है, फिर भी जो खींचतान करके यानी बलजोरी से जबरदस्ती खींचतान करके राग लाना चाहता है, उसके राग के साथ में एकता बुद्धि हुई, अतः वह पर्याय बुद्धि यानी मिथ्या दृष्टि है। गुरु को भी भूमिका के क्रम में राग आ जाता है। गुरु यानी मुनि दशा के जीव, किंतु शिष्य के कारण से राग नहीं आया है। यहाँ तो रेगुलर गुरु की बात है, मतलब जो मास्टर होगा शिक्षक होगा उसकी बात है। क्या, ये बराबर नहीं है बोल रहे, अच्छे क्या हो। मैं समझ गया, भूमिका के क्रम में राग आ जाता है, किंतु शिष्य के कारण राग से राग नहीं आया है। हमें तो शुभ राग करना पड़े ना, ये अपने यहाँ जो प्रश्न था उधर भी आया था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमको तो करना पड़े ना। ऐसा मानने वाले की दृष्टि राग के ऊपर है, उसको महत्ता किसकी है, अपने स्वभाव की है क्या राग के है? तो वो कहते हैं ऐसे मानने वाले की दृष्टि राग के ऊपर है, जिससे वह सहज ज्ञान दर्शन वाले आत्मा की प्रतीति से वह च्युत हुआ है। ज्ञानानंद स्वभाव की एकाग्रता ही मुनि धर्म है, किंतु पंच महाव्रत आदि 28 मूल गुण वह मुनि धर्म नहीं, अपितु कषाय की कणिका है। देखो बहुत लोग ऐसा मानते हैं और ऐसा बिल्कुल प्रयत्न भी करते हैं। हाँ साहब आप तो कहते बराबर है कि अभी तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तो राग करना चाहिए क्या नहीं, तो करने की वृत्ति अभी उनकी उठती है। तो यहाँ ऐसा कहते हैं कि शुभ राग रूप प्रवर्तो, यानी करो ऐसा नहीं कहते, वो सहज आ जाते हैं, उसमें तुम निषेध मत करो, लेकिन उससे धर्म नहीं होता इस बात की खातरी करो पहले। मोक्ष मार्ग प्रकाशककार ने कहा है मान्यता में ही जो गड़बड़ है, जो कहते ना हमें ऐसा तो करना चाहिए ना, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक तो शुभ राग करना चाहिए ना, यानी करने धरने की प्रवृत्ति अभी अभी यहाँ बताए ना, उसके तो पर्याय दृष्टि है, यानी वो पर्याय राग से भिन्न ऐसा मैं स्वयं हूँ और उसमें मुझे एकाग्र होना है, इस बात को तो छोड़ ही देता है। तो कहते जब सम्यक दर्शन होगा तो हम नहीं राग करेंगे। अरे सम्यक दृष्टि क्या, मुनियों को राग होता है। हाँ जी कैसी होगी ऐसा राग है तो वो तो जानने में आ रहा है ना, वो करने वाला थोड़ी है, वो आ रहा है वो जानता है वो। हाँ जी हाँ बहुत आसान है। देखो अभी मैं थोड़ा पर्सनली बात करूंगा, आपकी शादी हो के मान लो एक 30 साल हो गए 25 साल हो गए जो भी, जब आप कॉलेज में जाती थी जब की बात सोचो, जब आप सबको साथ दोस्ती रखती थी, यानी अभी समझ लीजिए हम सब कॉलेजियन हैं, हमारे साथ दोस्ती, इनके साथ दोस्ती, इनके साथ सबके साथ दोस्ती दोस्ती दोस्ती, मित्र मतलब लेडी हो या जेंट्स हो, क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं फ्रेंड्स तो कॉमन शब्द हो गए, गुजराती में कुछ होगा ना, जो भी होगा समझ लो आप। लेकिन जिस दिन आपका ये हमारे कौन है जयंत भाई ना, जयंती भाई के साथ नक्की हो गया कि भाई इनके साथ मुझे अभी शादी करनी है, तो बाकी लोगों के तरफ पहला जो आपका दोस्ती था उस दोस्ती में कुछ फर्क पड़ गया क्या? नहीं। अरे अभी तो मेरा नक्की हो गया, फिर क्या मैं स्वच्छंद होगा क्या? नहीं। वैसे मैं अपने स्वरूप में जब एकाग्र हो जाऊंगा, मुझे अपने स्वरूप का पता लगेगा, तो ये राग भी आएगा तो वो तो मेरे जानने का है, मेरे ज्ञान का गेय है, बस आता है ये मुझे मालूम है। ये मित्र है ठीक है, कब तक? घर के बाहर जैसा अपना बर्ताव अपने घर वालों से होगा वैसे उनके साथ नहीं होगा, तो स्वच्छंदता थोड़ी हो जाएगी। ऐसे कोई होते महाभाग स्वच्छंदता करने वाले, लेकिन उनका क्यों अपूर्ण आदर्श रखना। वैसे हम देखते हैं कि बनारसी दास जी जो थे वो पहले समयसार पढ़ के आप जैसा कहते वैसे स्वच्छंदी हुए थे, निश्चयाभासी जिसको कहते, लेकिन फिर उनको ऐसे कोई गुरु मिलेगी जिनके कारण वो एकदम सुधर गए। और नाटक समयसार नामक बहुत बढ़िया ग्रंथ उन्होंने लिखा है समयसार के ऊपर। ऐसे कोई होते हैं लेकिन वो सुधरते भी है ये भी ध्यान रखना, इसलिए मैं वो बता रहा हूं। जो ऐसा समझते हैं ना कि भाई हम स्वच्छंद हो जाए, तो स्वच्छंद हो जाए यानी चांसेस है नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन जो सही रूप से समझेगा वो होगा नहीं, इतनी बात ध्यान रखना। हाँ नहीं आज के मैं कहता हूँ कि वो स्वच्छंद नहीं होगा, बस इतना आप जो भी समझना है समझ लो। जैसा हम देखते हैं कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो सम्यक दर्शन होने के बाद जीव जल्द से जल्द मोक्ष जाता है, थोड़े ही टाइम में। कई के ऐसे भी होते हैं कि अर्ध पुद्गल परावर्तन इतना लंबा समय लेके फिर जाते हैं, एक गया तो क्या सब थोड़ी जाएंगे। ऐसे कोई एकाध तो स्वच्छंद हो जावे, नहीं ऐसी बात नहीं, इसका अर्थ ऐसा थोड़ी है कि सभी होते हैं, एकाध हो एकाध तो हो जावे। जैसे व्यापार करते करते एकाध कोई नादारी हो जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, दिवालिया बैंकरप्ट हो जाता है, सभी थोड़ी होते हैं। जैसा आपने बीच में पूछा था कि मैं अभव्य हूं तो घबराना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने स्वभाव का जिसको बिल्कुल निश्चय हो गया है तो उसको तो इस बातों से डरना ही नहीं चाहिए, क्या आवश्यकता है। स्वच्छंद नहीं होगा वो तो मानेगा कि अरे ये राग जो है वो अशुभ राग है या शुभ राग है, दोनों भी मेरे ज्ञान के गेय है। अभी तो अपनी क्या बात चल रही है, नहीं अशुभ नहीं आना चाहिए, शुभ आवे तो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, यानी उसमें भी हम अभी तुलना कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों अभी हम बहुत बार बात हुई है मेरे ख्याल से कि दोनों चांडालनी के पुत्र है, बताया था मैंने आपको, समय सार में आया ये बात, दोनों ही एक जाति के हैं, शुभ राग होवे या अशुभ राग होवे, जुड़ो भाई भाई भाई, उसमें कोई ये अच्छा और ये नरसा ऐसा कोई बात नहीं, दोनों ही खोटे हैं। वहां तो ऐसा लिखा है जो संसार में गिरावे डुबावे उसको आप सुशील कैसा कहते हैं, दोनों कुशील है। संसार में रखड़ावे उसको अच्छा कौन कहे, दोनों ही बुरे हैं। तो अभी तक अपने दिमाग में यही बात चल रही है कि नहीं शुभ राग आवे तो ठीक है, मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, उनके दर्शन कर रही हूँ और मेरा आवाज उपयोग कहीं जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो हमारी धान किधर है पर्याय के ऊपर, उस वक्त भी ऐसा जानना कि मैं तो गायक स्वभावी हूँ और ये राग आया है, भले दो मिनट के बाद याद आया होगा, तुरंत नहीं आएगा, बाद में भी आएगा, लेकिन जब अपने दिमाग में तो ये बात पक्की करो कि मैं तो गायक हूँ, जानने देखने वाला हूँ, त्रिकाली स्वभाव पर वारंवार अपनी दृष्टि जावे, ऐसे विचार उठने चाहिए, अभी चाहिए बताएंगे। और कौन सी भाषा में बता सकते हैं, क्या कह रहे हैं, हमें तो शुभ राग करना पड़ेगा ना, ऐसे मानने वाले की दृष्टि राग के ऊपर है, जिससे वह सहज ज्ञान दर्शन वाले आत्मा की प्रतीति से वह च्युत है, ज्ञानानंद स्वभाव की एकाग्रता ही मुनि धर्म है, किंतु पंच महाव्रत आदि 28 मूल गुण वह मुनि धर्म नहीं अपितु कषाय की कणिका है। जगत दृश्य है, दृश्य यानी देखने योग्य है, ज्ञेय है, और मैं क्या दृष्टा ज्ञाता हूँ, किंतु राग को लाने वाला मैं नहीं हूँ, ऐसे भान बिना क्या लिखा आगे ना, बस अभी देखो जो आपने पूछा इसका उत्तर तुरंत आ गया यहाँ धड़ाधड़, क्या कहते हैं, ऐसे भान बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, जिसे सम्यक दर्शन हुआ है उन्हें राग को लाने की बुद्धि नहीं होती, फिर भी भूमिका अनुसार राग क्रम में आ जाता है, यानी जो आना हो सो वह आता है क्रम में, यानी एक के बाद एक जो कुछ आने वाला होगा। मैं जो दो साल बाद का राग अब भी लाऊं नहीं आया, क्रम से जो आना हुआ। त्रिलोकीनाथ द्वारा कहा गया मार्ग बाह्य दृष्टि वाला सुनता ही नहीं, सुनने पर भी सत्य सुनने में नहीं आया, जो कषाय को लाना चाहते हैं वे तो मिथ्या दृष्टि है, धर्मात्मा को क्रम में जो राग आ जाता है वह तो चारित्र का दोष है किंतु श्रद्धा का दोष नहीं। राग को लाना और राग का आना इसमें अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। क्या? हाँ बोलो बोलो। नहीं दिल में कोई बात मत रखो। जहाँ छठवें गुणस्थान के चारित्र का सकाल है, वहाँ इतना यानी अमुक दोष है, उसे वे दोष रूप जानते हैं। पंचमहाव्रत को लाऊं पालूं, ऐसी उसमें उपादेय बुद्धि नहीं होती। पहले से ही स्वभाव सन्मुख दृष्टिवंत को भूमिका योग्य क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय है, किंतु उनके क्रम को बदलने का नहीं। फिर भी वहाँ ऐसा ही शुभ राग निमित्त रूप है, इसलिए वे पंचमहाव्रत का पालन करते हैं, ऐसा व्यवहार नहीं का कथन। यानी वो पालन करते हैं ऐसा कहना, क्योंकि वो विवाह परिणाम जो है उसका पालन करते हैं ऐसा कहा ना, इसलिए उसको व्यवहार नहीं कहा। व्यवहार अर्थात ऐसा नहीं है, एम नहीं। उन्होंने गुजराती जोड़ दिया, कंफर्म नहीं हो रहे कि भाई ये सही ट्रांसलेशन है कि नहीं। इसको निश्चय कहता है कि मुनि राग को नहीं पालते, किंतु भूमिका में राग आ जाता है। सहचर जानकर, यानी सहचर यानी साथ में है, निमित्त जानकर उसे महाव्रत का पालन कहते हैं, ऐसा कहने में आता है। मुनि तो उसे निमित्त रूप नीय रूप जानते हैं। आत्मा के सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बिना चारित्र नहीं होता। श्री कुंदकुंदाचार्य प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं चारित्र अंगीकार करता हूँ, ऐसे चारित्र की यहाँ बात चलती है। आत्मा की सम्यक प्रकार से पहचान के बिना राग की मंदता करे तो पुण्य बंधेगा, किंतु उससे संसार का अंत नहीं आता। देखो हम ऐसा मानते हैं ना बहुत बार, ये थोड़ा सा विषयांतर है कि केवल जैनी ही स्वर्ग में जाते होंगे, तो ऐसा जरा भी नहीं है। क्या कहा यहाँ? आत्मा की सम्यक प्रकार से पहचान बिना, तो ऐसा कौन करेगा? जैनी भी करेगा और अन्य जीव भी करेंगे। अजैन राग की मंदता करे तो उससे पुण्य बंधेगा और वह स्वर्ग में चला जाएगा, लेकिन कहते उससे संसार का अंत नहीं होता। मुनि कहते हैं कि आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंद कंद है, ऐसा भान और रमणता होने पर भी पूर्ण वितराग न हो तब तक अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह व्रत का राग आता है, वह पुण्य बंध का कारण है, किंतु धर्म नहीं है। वास्तव में अंतरंग निर्मल स्वभाव का आश्रय निर्विकल्प प्रतीति ज्ञान और रमणता ही धर्म है। ये धर्म क्या है वो बताए। धर्म क्या कहा? अंतरंग निर्मल स्वभाव का आश्रय निर्विकल्प प्रतीति यानी श्रद्धा, उसका ध्यान और उसी में एकाग्र हो जाना, स्थित हो जाना, स्थिरता धारण करना और रमणता जो है वही धर्म है और वही मोक्ष मार्ग है। किंतु देह की क्रिया और पुण्य का विकल्प धर्म नहीं है। आत्मज्ञान बिना कभी भी धर्म नहीं होता। एकदम वर्डिक्ट दे दिया। लोग देखा देखी बरसी तप करते हैं, बरसी यानी वर्षी तप, वो ब की जगह ब चाहिए, उसमें राग की मंदता हो तो पुण्य होता है, किंतु पुण्य से धर्म मानना वह तो मिथ्यात्व है। और हम तो बरसी तक पूरा हो गया तो बड़ी जुलूस निकालते हैं और क्या क्या नहीं करते। एक साल नहीं खाना खाया जो भी होगा, अभी मैं तो जानता है बरसी तो क्या होता है जो भी होगा। हाँ, एक दिन खाना खाने का, दो दिन का, क्या क्या क्या, अरे तो
एक एकासन एक उपास।
देखो सुनो सुनो, 12 महीना नहीं खाने का और 13वें महीने में 1 बरस का खाने का, ऐसा नहीं है उधर। मैं बोलता हूँ सुनो, एक दिन उपवास रखने का, दूसरे दिन एकासन, फिर उपवास, फिर एकासन, फिर उपवास, फिर एकासन। हाँ, उसको वर्षी तब बोलते हैं, ऐसे ही है ना बिल। हाँ, और इतना दिन उपवास किया, इसलिए जब भी पूरा होगा तो पूरे समाज को एक दिन का उपवास करा देना। तो क्या करते हैं, शिरडी का रस पीते नहीं? मैं यही कहना चाहता हूँ, हम तो उपवास करें, एक बरस की बरसी तब करें, और फिर आखिरी में वो उद्यापन क्या होता है आप लोगों का? हाँ, तब तो खिलाते हैं। तो ये क्या है, ये राग है पूरा पूरा, कैसा फेमस होने का, क्या कह रहे हैं देखो। लोग देखा देखी, यानी वो क्यों करने का, क्या करने का, वो नहीं, आपने किया तो मैं भी करूं, क्योंकि नहीं करो तो मेरा नाम खराब हो जाए। तो क्या तुम ही ग्रेट है कि हम भी सी ग्रेट है, दी ग्रेट। देखा देखी बरसी तब करते हैं, उसमें राग की मंदता हो तो वो मेन कंडीशन है, पुण्य होता है, किंतु उसके साथ साथ पुण्य से धर्म मानना वह तो महापाप है। क्या लिखा, लिखा तो लिखा है, हम सोचा महापाप लिखा है। तो आप जान, हाँ, आहार पानी नहीं लेना अकाम निर्जरा का कारण नहीं है, किंतु राग की मंदता हो तो पुण्य बंद होता है, वहाँ मंद कषाय हो तो अकाम निर्जरा है, किंतु धर्म तो है ही नहीं, ही लगाया।
यहाँ ऐसा लिखा है, आहार पानी नहीं लेना अकाम निर्जरा नहीं है, तो आहार पानी नहीं लेना कौन सी निर्जरा है?
कोई भी नहीं उत्तर दे रहा, क्या बात है? अरे खाने पीने की निर्जरा हो गई ना, नहीं लिया तो वही रह गया।
यानी ये जरा की क्रिया खाना है ना, ये नए को हम लोग है वो तो जरा ख्याल लेना, जरकी क्रिया में कोई निर्जरा नहीं है। इसलिए आगे फिर लिखा कि राग की मंदता हो तो पुण्य बंद होता है, बंद की बात है, निर्जरा की बात ही नहीं है वहाँ। और फिर मंद कषाय हो तो अकाम निर्जरा है।
अभी वहाँ लिखा ना तीसरी लाइन में, वहाँ मंद कषाय हो तो अकाम निर्जरा है, किंतु धर्म तो है ही नहीं, उसमें भी लोभ आसक्ति की तीव्रता न हो तो ही पुण्य होता है। देखो भाई साहब कितना क्लियर लिखा, आपको जो पूरा चाहिए था ना, क्या ये सब इसमें, मैं बोलने की जरूरत नहीं, इधर ही है।
ये तो निर्जरा तो होती है ना थोड़ी, देखो काम निर्जरा लिखा है तो उसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ लिखा ना मंद कषाय हो तो काम निर्जरा है, नहीं तो होती है, यानी वो संवर पूर्वक वाली निर्जरा नहीं है, ये अकाम है, यानी मोक्ष मार्ग में कुछ काम की नहीं है, ये अकाम निर्जरा है। क्योंकि हर समय वैसे कर्म खिल जाते हैं ना, जिसमें हम लेते हैं अनंत कर्म लेते हैं कर्म परमाणु, उसमें अनंत कर्म परमाणु हर समय निकल जाते हैं, तो उसके कारण ये तो बंद तो नया हो रहा है, यानी ये संवर पूर्वक वाली निर्जरा नहीं है, मोक्ष मार्ग में जो निर्जरा कहते हैं वो वाली ये निर्जरा नहीं है। तभी मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा, जो त्रिकाली की दृष्टि करता है वो मिथ्या दृष्टि कहाँ रही? राग को जानते हैं, राग को अपने खाते में जानते हैं। देखो, कोई तप किया, कोई व्रत किया, स्वाध्याय किया, तो अपने को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? इन्हें राग में अच्छा माना ना, हमने कुछ विशेष किया, ऐसा मानते कि नहीं मानते? क्या उसमें दुख लग रहा है कि स्वाध्याय में क्यों मैं अटका हूँ, मैं अपने स्वरूप में क्यों नहीं स्थिर हो रहा हूँ, ऐसा विचार नहीं अभी आ रहा है ना? यानी उस राग में अभी एकत्व बुद्धि पड़ी है अंदर, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि राग को जानता है, परंतु जान कैसा जानता है? वो अपना जानता है। राग को तो जानेगा ना, मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि सभी जानेंगे, परंतु राग को ये अपना है ऐसा जानते हैं वे मिथ्या दृष्टि।
इंदुबेन को कुछ प्रश्न थोड़ो बोलो, आपने कुछ बोला था ना, पूछा था?
हाँ बराबर बताया। हाँ हर
लेकिन
समय जो,
हाँ। लेकिन वो मोक्ष के काम में नहीं है,
संवर पूर्वक वाली नहीं, जरा नहीं है। अभी वो विषय अंतर हो जाएगा
सुबह में, आपसे ही सुनेंगे। आप बताना चाहते हैं क्या? माइक पहुंचा दूंगा मैं, आप बताओ भाई, उसको चाहिए उसका काम निर्जरा क्या और काम निर्जरा क्या? हाँ सवा तीन हो, सवा सात हो गए। चलो चावाणी के ज्ञान से तुझे लो कानो तो वाणी मस्तकण मो सदा देखो।